नमस्कार, आज हम एक काफी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, साइबर युद्ध, और ये हमारी रोजमर्रा के डिजिटल सुरक्षा से कैसे जुड़ा है। ये एक ऐसा मोर्चा है जो दिखता नहीं, पर लड़ाई शायद वहां कभी रुकती नहीं।
हाँ बिल्कुल।
तो आज हम इसी साइबर खतरे के पूरे नजारे को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब कैसे देश एक दूसरे के सिस्टम पर हमला करते हैं और कैसे यू नो हमारी अपनी जानकारी, हमारा पैसा, वो भी दांव पर लगा है।
बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि साइबर युद्ध वो पारंपरिक लड़ाइयों जैसा नहीं होता। इसका कोई तय शुरू या अंत नहीं है, ये बस चलता रहता है लगातार। कुछ देश जैसे चीन, उनके पास तो पूरी की पूरी साइबर सेनाएं हैं।
अच्छा,
तो फिर इसका असर मतलब आम लोगों पर या जरूरी सेवाओं पर कैसे पड़ता है? हमने भारत में एम्स वाली घटना सुनी थी।
हाँ, वो बड़ा मामला था,
जहाँ 22 दिनों तक सब ठप रहा।
फिर यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला हुआ, वो भी क्रिसमस के टाइम पर।
हाँ
सही रही, ब्रिटेन की जो स्वास्थ्य सेवा है NHS, वो भी निशाना बनी। तो क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए होता है या कुछ और बात है?
देखिए, मंशा अलग अलग हो सकती है, पैसा एक मकसद हो सकता है, पर हमेशा नहीं। जैसा आपने एम्स या यूक्रेन का उदाहरण दिया, वहां मकसद देश को एक तरह से पंगु बनाना, अस्थिर करना भी हो सकता है।
अच्छा,
दूसरी तरफ सोनी पिक्चर्स पर जो हमला हुआ था, माना जाता है उत्तर कोरिया ने किया। वो एक फिल्म के बदले में था, एक तरह का बदला। और फिर वो स्टक्सनेट वाला मामला ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर।
हाँ, वो तो काफी सुना था, USB से फैला था शायद।
हाँ बिल्कुल, अमेरिका इसराइल का हाथ माना जाता है, और वो शायद पहला ऐसा डिजिटल हथियार था जिसने सीधे मतलब फिजिकल मशीनों को नुकसान पहुंचाया, वो भी एक USB ड्राइव से।
तो ये सिर्फ डेटा चोरी करने जैसा नहीं है, मतलब उससे कहीं ज्यादा?
बिल्कुल, डेटा चोरी जिसे हम गोपनीयता भंग कहते हैं, वो एक पहलू है, पर उससे भी खतरनाक हो सकता है डेटा बदलना।
बदलना मतलब? हाँ,
इंटेग्रिटी भंग। सोचिए अगर किसी के मेडिकल रिकॉर्ड बदल दिए जाए या बैंक बैलेंस, ये बहुत खतरनाक हो सकता है।
बाप रे।
और तीसरा है सेवाएं ठप कर देना, उपलब्धता पर हमला, जैसा एम्स में हुआ। जो राष्ट्र राज्य होते हैं वो अक्सर APT ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं।
APT,
एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। ये वो हैकर ग्रुप होते हैं जो किसी नेटवर्क में घुस जाते हैं और महीनों सालों तक चुपचाप बैठे रहते हैं, जासूसी करते हैं, डेटा निकालते हैं, पता भी नहीं चलता।
ये तो बहुत डरावना है।
और ये खतरा सिर्फ जमीन तक नहीं है, हवाई जहाजों की सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं।
हाँ, सुनने में आया था ईरान के ऊपर उड़ानों के GPS सिग्नल जाम करने की कोशिशें हुई थी।
अच्छा,
और कुछ लोग तो, जो मलेशियाई एयरलाइंस MH370 गायब हुई थी, उसके पीछे भी साइबर हमले का शक जताते हैं। हालांकि ये पक्का नहीं है, बस थ्योरी है।
ये तो बड़ी बातें हो गई, लेकिन हम पर मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या असर है? डेटा लीक की खबरें तो आती रहती है ना। हाँ, और वो बहुत बड़ा असर है। याहू याद है, 3 अरब उपयोगकर्ताओं का डेटा लीक हुआ था।
3 अरब?
हाँ, और फेसबुक, जीमेल जैसी बड़ी कंपनियां भी इससे बची नहीं है। और चिंता की बात यह है कि ज्यादातर, करीब 85% मामलों में डेटा लीक सर्वर की तरफ से होता है, हमारी गलती से कम।
डोमिनोज बिग बास्केट से भी तो हुआ था।
बिल्कुल, उन सब जगहों से भी।
तो इस लीक हुए डेटा का होता क्या है फिर, ये जाता कहाँ है?
ये अक्सर डार्क वेब पर बिकता है, पासवर्ड, पर्सनल जानकारी, क्रेडिट कार्ड नंबर, सब कुछ।
अच्छा,
फिर अपराधी इसी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, उगाही करने के लिए। वो ईमेल आते हैं ना कभी कभी।
हाँ हाँ, कि हमने आपका फोन हैक कर लिया है, ये रहा आपका पुराना पासवर्ड, अब बिटकॉइन भेजो वरना।
बिल्कुल वही।
और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जानकारी सीधे वहीं से लीक हुई जहां हमने दी थी। जैसे मान लीजिए किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया।
हाँ,
और कुछ दिन बाद ही फ्रॉड कॉल आ गया कि लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे दो, या फ्लिपकार्ट पर कुछ रिटर्न किया और तुरंत OTP मांगने वाला कॉल आ गया।
सही कहा, कि ये बिल्कुल दिखाता है कि डेटा स्रोत से ही लीक हो रहा है। आजकल तो डीमैट खाते भी उतने ही रिस्क पर हैं जितने बैंक खाते। अगर OTP पता चल गया या किसी ने धोखे से कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करा दी तो मुश्किल हो सकती है।
तो ऐसे में कुछ बुनियादी चीजें क्या हैं जो हम अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं?
देखिए, सबसे जरूरी है 2-factor authentication, 2FA। हाँ, मतलब पासवर्ड के साथ आपके फोन पर एक कोड भी आएगा, इसे हर जरूरी अकाउंट पर चालू करना चाहिए। ये सुरक्षा की एक बहुत मजबूत परत है। और अगर हो सके तो OTP के लिए एक अलग, बिल्कुल बेसिक वाला फोन रखे जिसमें कोई बैंकिंग ऐप या जरूरी जानकारी ना हो।
ये अच्छा आइडिया।
और आप चाहें तो haveibeenpwned.com जैसी वेबसाइट पर अपना ईमेल डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा कहीं लीक तो नहीं हुआ।
अच्छा, haveibeenpwned.com और लिंक्स वगैरह आजकल तो बहुत आते हैं।
हाँ, संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले देखें कि वो क्या क्या परमिशन मांग रहा है, क्या उसे वाकई उन सब चीजों की जरूरत है।
और ऑनलाइन पेमेंट करते समय कार्ड की जानकारी कहाँ डालनी चाहिए कहाँ नहीं?
कोशिश करें कि उन्हीं वेबसाइट्स पर कार्ड डिटेल्स डालें जो टोकनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं। इसमें वेबसाइट आपका असली कार्ड नंबर सेव नहीं करती, एक टोकन सेव करती है। और अनजान लिंक्स की जांच के लिए viewdns.info जैसे टूल्स मदद कर सकते हैं। और हाँ, आजकल वो जो स्कैम चल रहे ना कि थोड़े पैसों के बदले छोटे मोटे टास्क करो,
हाँ बहुत चल रहे हैं,
उनसे बिल्कुल बच के रहे। उनमें अक्सर बैंक खाता फ्रीज होने का खतरा रहता है। और एक छोटी सी टिप, अपने फोन से 002# डायल करके आप चेक कर सकते हैं और हटा सकते हैं अगर कोई कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो रखी है।
002#,
ठीक है।
तो कुल मिलाकर ये साइबर खतरा दो लेवल्स पर है। एक तरफ देशों के बीच ये अदृश्य जंग चल रही है,
हाँ,
और दूसरी तरफ हम सबकी निजी और वित्तीय सुरक्षा पर लगातार खतरा मंडरा रहा है।
बिल्कुल। और अगर थोड़ा भविष्य की सोचें तो एक सवाल और मन में आता है। आज खतरा हमारे फोन कंप्यूटर अकाउंट्स तक है,
हाँ,
लेकिन जैसे जैसे बायो चिप्स आ रहे हैं, न्यूरलिंग जैसी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है,
हाँ,
तो क्या भविष्य में हैक होने का मतलब सिर्फ डिवाइस का कंट्रोल खोना होगा, या ये इंसानों के विचारों और उनके कामों को कंट्रोल करने तक पहुंच सकता है?
अरे बाप रे,
ये एक सोचने वाली बात है भविष्य के लिए।